नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। अगले 15 मिनट खेल जगत के ढेर सारे खबरें होंगी, क्रिकेट से, टेनिस से, और खेल मंत्री का भी जानकारी देंगे, उन्होंने क्या कुछ कहा है कीर्ति के बारे में। स्वीकार कीजिए लवलीन निगम का नमस्कार, और खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार सौमित्र बोस। सौमित्र नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो सौमित्र, महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट चल रहा है दाम्बुला में, जहां पाकिस्तान ने भारत को दिया है 109 रन का टारगेट, तो आपको लगता है कि इसी टारगेट है विच इंडियन टीम बना लेगी आराम से?
देखिए, इजी टारगेट कुछ नहीं होता आपको। मैं इंडिया जिम्बाब्वे का फर्स्ट ओडीआई लेके जाता हूं कि हमने हार चुका था वो मैच, और उसके बाद चार मैच हमने जीता है, तो इजी टारगेट कुछ नहीं होता क्रिकेट में। मगर हां, अगर आप रिकॉर्ड देखा जाए, इसको इजीली इंडिया जीतना चाहिए।
तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे, पहले हेडलाइंस। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में पाकिस्तान ने भारत को 109 रन का लक्ष्य दिया। खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने खेलो इंडिया उभरती प्रतिभा की पहचान कीर्ति पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। स्वीडिश ओपन में राफेल नडाल का मुकाबला मारियानो नवोन्स के बीच जारी है, और विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में भारत ने की विजयी शुरूआत। शुरुआत क्रिकेट से करते हैं। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में पाकिस्तान ने भारत को 109 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीता पहले पाकिस्तान ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, और उसकी पूरी टीम अंतिम ओवर खेलने से आ गया था। 20वां ओवर 108 रन पर आउट हो गई। भारत की तरफ से अगर बात करें, सौमित्र, रेणुका सेन, पूजा वस्त्राकर ने दो दो विकेट लिए, दीप्ति शर्मा ने तीन विकेट लिए। पहले अगर हम बॉलिंग की बात करें तो दीप्ति शर्मा एक अच्छी उभरती हुई खिलाड़ी, और तीन विकेट उन्होंने चटके।
काफी एक्सपीरियंस है, बंगाल का ऑलराउंडर है 26 साल की, उनमें काफी प्रतिभाशाली है, और भारतवर्ष में आए वुमेन्स आईपीएल तो खेलती हैं, और काफी इनका दो तजुर्बा एक्सपीरियंस है वो आपको देखने को मिल रहा है। खास करके ये है कि जो ये मैच डंबुल में हो रहा था, पाकिस्तान टॉस जीता और उसने खुद बैटिंग करने का निर्णय लिया, मगर इसको तो क्लियर लगता है कि 108 रन शायद काफी नहीं होंगे।
भारत जैसे साउथ अफ्रीका से श्रृंखला बराबर करके आई है, तो एक अच्छा टेस्ट लेकर आई है कि हाँ हमें जीतना है। स्मृति मंदाना की बात करें, बहुत अच्छे फॉर्म में, आज पूजा वस्त्राकर को हमने देखा दो विकेट लिए हैं, तो लग रहा है कि, और हम मौजूदा चैंपियन हैं एशिया कप के, तो एक थोड़ा आपको प्लस पॉइंट लग रहा है इंडियन टीम?
प्लस पॉइंट तो है ही है। देखिए, इतना बड़ा साउथ अफ्रीका काफी शक्तिशाली टीम है, महिला क्रिकेट में शक्तिशाली टीम है। उसको T20 सीरीज में हमने पांच मैच का जो श्रृंखला था, इसमें से हमने तीन मैच जीता, एक मैच हारा, एक मैच में रिजल्ट नहीं हुआ है। और आप जिनकी नाम जिक्र किए, जैसे स्मृति मंदाना है, शफाली वर्मा है, राधा यादव है, जिमाइमा है, तो ये सारे कॉन्ट्रीब्यूट, और हरमनप्रीत तो ऑलवेज ऑलराउंडर है ये, और शी इज अ वेरी गुड कैप्टन, और ये आपको एशिया कप में दिखेगा, 7 टाइम चैंपियंस है, और पाकिस्तान कभी टूर्नामेंट जीता ही नहीं है
जी। और पाकिस्तान का देखा भी जाए, अगर हम पिछला पूरा साल देखें तो उसमें सिर्फ 19 मैच खेले हैं और 7 जीते हैं। पाकिस्तान की महिला टीम या पुरुष टीम भी बात करें, कोई बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर नहीं रहे।
ये देखिए, ये जो प्रदर्शन और रिजल्ट्स, ये सिस्टम के बारे में रिफ्लेक्शन है, और इंडियन क्रिकेट इतना सारा दुनिया में माना जाता है कि जिस तरह से टूर्नामेंट्स किया जाता है डोमेस्टिक लेवल में, खास करके जो वुमेन्स आईपीएल
प्रमोशंस दिए जाते हैं,
प्रमोशंस, जिस तरह से प्लेयर्स को उत्साह दिया जाता है इस टूर्नामेंट में, इसी का जो रिजल्ट नतीजा आपको दिख रहा है।
और हम ये भी बता दें, श्रीलंका द्वारा आयोजित है महाद्वीपीय क्रिकेट टूर्नामेंट का 9वां संस्करण है। 8 देश इसमें, 4-4 टीमों को 2 समूह में बांटा गया। ग्रुप चरण के दौरान सभी टीमें एक एक बार एक दूसरे से मुकाबला करेंगी। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम को ग्रुप ए में पाकिस्तान, नेपाल और यूएई के साथ रखा है। आज एक और मैच था जो यूएई और नेपाल के बीच था, जहां जीत के लिए 116 रन का लक्ष्य मिला था, नेपाल को उसने 17वें ओवर में हासिल कर लिया। नई टीमें हैं दोनों, यूएई और नेपाल।
नेपाल खास करके काफी प्रतिभाशाली टीम है, ये देखिए, ये तो नेपाल, ये जैसे आपने जिक्र किया कि 4 टीम से एक ग्रुप है, और 2 टॉप 2 टीम्स सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। ऐसा लगता है कि इंडिया ग्रुप में नेपाल और इंडिया तो टॉप जरूर करना चाहिए।
7 बार के हम चैंपियन
हैं, और शायद ये नेपाल भी सेमीफाइनल तक प्रवेश जरूर करेंगे।
और अब आगे बढ़ते हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में खेलो इंडिया उभरती प्रतिभा की पहचान यानी कीर्ति पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि कीर्ति परियोजना का उद्देश्य शहरों, गांवों, जनजातीय और हिमालय क्षेत्रों से खेल प्रतिभा को तलाशना है। उन्होंने क्या कुछ कहा सुनते हैं, फिर चर्चा करेंगे।
स्पोर्ट्स में रही टैलेंट उसको आइडेंटिफाई करना, ऑल टाइप ऑफ व्यवस्था देके उसकी स्किल को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी के साथ कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट करे और स्वयं भी आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। ये लक्ष्य को अचीव करने के लिए कीर्ति प्रोजेक्ट के अंतर्गत टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का कार्य चल रहा है। फेज टू है। प्रधानमंत्री जी ने पहले 100 दिन के कार्यक्रम में तय करा है कि हमें 1,00,000 स्पोर्ट्स में टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है और उसको अपॉर्चुनिटी देना है।
और इससे पहले कीर्ति के पहले चरण का उद्घाटन मार्च में किया गया था। चंडीगढ़ में 62,683 पंजीकरण किए गए हैं इस चरण में। और तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती जैसे 11 खेल स्पर्धाएं हैं जिसमें एथलीटों को जो है प्रोत्साहित किया जाएगा। एक बहुत अच्छी कीर्ति योजना अगर बात करें।
बहुत ही बढ़िया है। खास करके आपको एक वो दिन आंकड़े देना चाहता हूं कि जो हमारे 118 का जो स्क्वाड पेरिस ओलंपिक्स में जाएंगे इसमें 28 ऐसे हैं जो खेलो इंडिया इकोसिस्टम से प्रोड्यूस किया गया है। इसमें कौन है? इसमें आपका मनु बाकर है, स्विफ्ट है, शूटर्स है और सारे जितने आपको रेसलर्स, आपको पहलवान जो है जो देख रहे सब ये सिस्टम से आए हैं। और जो खेलो इंडिया का जो मकसद है ये है ब्रॉड बेस और मास पार्टिसिपेशन,
ग्रासरूट लेवल,
और हर एक बच्चे को स्पोर्ट्स में लाना चाहिए। क्योंकि ये लास्ट टाइम जो मार्च महीना में जब ये उद्घाटन हुआ था कि जो पहले जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर था उसका कारण था कि पहले तो मास पार्टिसिपेशन और ड्रग्स और दूसरा जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस है वहीं से निकाल के उनको खेल के जगत में लाना चाहिए,
एक अच्छी जगह लाना। और उसके लग रहा है हमें परिणाम भी मिल रहे हैं क्योंकि खिलाड़ी इंडिविजुअल हो चाहे कुछ हो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।
जी, वो जैसे देखिए एशियन गेम्स में 100 मेडल से ज्यादा, और सिर्फ ये नहीं कि पैरा गेम्स में भी हमारा काफी प्रदर्शन अच्छा हो रहा है। और ये सारे प्लेयर्स जो है ये खेलो इंडिया इकोसिस्टम से आए हैं और खास करके जो सरकार है और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है टॉप्स का स्कीम से इनको सबको फंडिंग करते हैं। और इस साल 470 करोड़ से भी ज्यादा इनके पीछे हमने पेरिस साइकिल में खर्च किए हैं और इसका नतीजा तो पेरिस में पता चलेगा,
उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम टेनिस की बात करते हैं। स्वीडिश ओपन टेनिस का पुरुष सिंगल्स के जो है क्वार्टर फाइनल खेले जा रहे हैं, जहां जूजे एंजोकोविक तो सेमीफाइनल में पहुंच गए। इस समय स्पेन के राफेल नडाल खेल रहे हैं अर्जेंटीना के मारियानो नवोन से और एक टफ मैच चल रहा है। पहला सेट 6-7 से नडाल हार चुके थे, दूसरा उन्होंने 7-5 से अपना नाम किया, थर्ड सेट अभी चल रहा है। नोवान सुमित नागल को हराकर यहां पहुंचे हैं और राफेल नडाल का भी लग रहा है कि आसान नहीं है आगे बढ़ना, टफ मैच है, बहुत अच्छी
टफ मैच एक टाइम था जो आसानी से ये मैच जीत सकता था, मगर आपको पता है कि राफेल नडाल चोटिल है और वो प्रिपेयर कर रहे हैं कि पेरिस में वो खेले और किसके साथ खेले, कार्लोस जो अल्कराज विंबलडन चैंपियन उनके साथ डबल्स खेले। तो यही है, देखिए अगर वो ये मैच जीत सकते हैं तो क्वार्टर फाइनल तक पहुंच जाएंगे। अगर सुमित नागल जीतते तो उनके साथ खेलता, मगर उनका जो उद्देश्य है ये टूर्नामेंट खेलने का कि वो पेरिस ओलंपिक्स में डबल्स खेले स्पेन के लिए।
जी, इधर हमने नोवाक जोकोविच को भी देखा, वो भी पिछले टूर्नामेंट में जल्दी बाहर हो गए थे। तो लग रहा है आपको, जैसे हम वीमेंस की बात कर रहे थे, मेंस में भी अच्छे खिलाड़ी खूब आ रहे हैं, जो राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, जो हम पहले मानते थे कि टूर्नामेंट शुरू हो रहा है तो यही जीतेंगे,
आना चाहिए
तो आ रहे हैं और अच्छी टक्कर
आना चाहिए। इसमें जो टेनिस का जो प्रेमी है उनको भी बरकरार रहेगा कि एक चैंपियन बार बार, हम हमेशा चाहते हैं कि कोई भी नया चैंपियंस आए और नए उभरते, और ये काफी दिनों से जीतता जाए जो हमको थोड़ा बहुत शायद कैलकुलेशन में दिख रहा है। तो जितना कंपटीशन अच्छा होगा, और देखिए ये जो ग्रैंड चैंपियंस है, ये जोकोविच, फेडरर, नडाल, ऐसा माइलस्टोन्स करके ये इसको छूना ही तो मुश्किल है,
बहुत मुश्किल है। नए खिलाड़ी आएंगे, अच्छा लगेगा। उधर जर्मनी में हैम्बर्ग ओपन टेनिस प्रतियोगिता खेली जा रही है। पुरुष डबल्स में रोहन बोपन्ना एंड श्रीराम बालाजी की जोड़ी पहले दौर में जर्मनी के जेकब श्नाइडर और मार्क वॉलनर से हारकर बाहर हो गए। श्नाइडर और वॉलनर की जोड़ी ने हराया 6-1, 6-4 से। तो एक बोलेंगे श्नाइडर और वॉलनर की इजी जीत, रोहन बोपन्ना ने श्रीराम बालाजी के साथ जोड़ी बनाई थी, तो अर्ली एग्जिट उस जोड़ी की।
देखिए ये फर्स्ट टाइम दोनों एक साथ खेल रहे हैं और दोनों में एक्सपीरियंस और स्किल्स में काफी फर्क है। ये तो वो वर्ल्ड नंबर 4 है और ये वर्ल्ड नंबर बालाजी जो वर्ल्ड नंबर 62 है, इसका कॉम्बिनेशन सही नहीं था और पहली बार देखिए ऐसा भूल चूक होगा। इसके बाद देखिए वो फिर
पेरिस ओलंपिक में भी तो यही जोड़ी
बनी, यही जोड़ी खेलेंगे। इसके बाद देखिए हमें इतना तो उम्मीद है कि वो शायद अच्छा खेलेंगे, क्योंकि अगर उतना नहीं हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ये एक टूर्नामेंट और भी खेलेंगे ये क्रोएशिया ओपन में, शायद और बेटर समझौता
ट्यूनिंग
होगी और शायद रिजल्ट आपको बेहतर दिखेगा।
और पेरिस ओलंपिक की बात करें, हम टेनिस की ही आज बात करते हैं कि वहां क्या संभावनाएं लगती हैं रोहन बोपन्ना और एन बालाजी की जोड़ी की, मुकेश की इस रिपोर्ट में।
खेलों के महाकुंभ ओलंपिक के दौरान अधिकांश खेलों में प्रतिस्पर्धा की सतह नहीं बदलती, लेकिन टेनिस ऐसा खेल है जिसकी सतह टूर्नामेंट के साथ बदल जाती है। पेरिस ओलंपिक खेलों के दौरान 30 से भी अधिक वर्षों के बाद ओलंपिक की टेनिस स्पर्धा लाल बजरी यानी क्ले कोर्ट पर होगी। टेनिस मुकाबले उसी रोलंग एरो पर होंगे जिसने जून के शुरुआत में फ्रेंच ओपन की मेजबानी की थी। खिलाड़ियों को तालमेल बनाने में परेशानी हो सकती है, उन्होंने फ्रेंच ओपन के बाद जुलाई के शुरुआत में होने वाले विंबलडन के लिए खुद को ग्रास कोर्ट के अनुकूल ढाला और अब एक बार फिर उन्हें बेहद कम समय में क्ले कोर्ट पर सामंजस्य बैठाना होगा। उम्र के साथ निखरते जा रहे 44 साल के रोहन बोपन्ना अपने आखिरी ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए बेताब हैं। बोपन्ना अगर डबल्स रैंकिंग में शीर्ष 10 से बाहर हो जाते तो भारत का कोई भी खिलाड़ी टेनिस कोर्ट में नजर नहीं आता। बोपन्ना को एन श्रीराम बालाजी और यूकी भामरी में से एक को चुनना था, उन्होंने बालाजी को चुना। बोपन्ना का तीसरा जबकि 34 वर्ष के बालाजी का पहला ओलंपिक होगा और आशा है कि ये जोड़ी टेनिस कोर्ट से भारत को एक पदक दिलाने में सफल रहेगी। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
तो पहले यहीं से शुरू करें जो मुकेश कह रहे हैं कि खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि शायद रोहन बोपन्ना का अनुभव और एन बालाजी की जोड़ी ट्यूनिंग हो जाए और एक पदक आए टेनिस कोर्ट से।
शायद हम उम्मीद तो हमेशा कर सकते हैं। देखिए मैं आपको 1996 में वापस लेकर जाऊंगा एटलांटा ओलंपिक्स में, हमने कभी सोचा ही नहीं था लिएंडर पेस
एक मेडल लेंगे।
और देखिए एक नहीं दो नहीं तीन ओलंपिक्स खेलना बोपन्ना के लिए मेडल, अगर खास करके ये जीत पाएंगे तो बहुत ही बढ़िया होगी, क्योंकि उसने पास आ चुका है मगर जीत नहीं पाया सानिया मिर्जा के साथ
जी।
मगर ये अगर जीत पाएंगे तो देखिए ये तो ये हम सोच नहीं सकते, उम्मीद हम नहीं करेंगे, मगर खेल जगत में ये सब उलट फिर होते रहता है, अपसेस होते रहता है और हम सोचेंगे कि ये शायद कुछ उलट फिर करके एटलीस्ट मेडल राउंड तक पहुंचे।
रोहन बोपन्ना का देखा जाए वैसे भी 44 ईयर्स के हैं और लगातार अच्छा कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि उनका अनुभव काम आए। अब खेलों के महाकुंभ में जो लाल बजरी पे खेला जाएगा, काफी एकदम से चेंज हो जाएगा यहां पर आना,
क्या चीज
जैसे अभी इन्होंने बोला ना टेनिस मुकाबले रोला गैरा पर होंगे।
हाँ, जून हाँ, जरूर। देखिए ये सिर्फ डबल्स में नहीं, आप खास करके सुमित नागल की बात करें तो वो ये क्ले कोर्ट स्पेशलिस्ट है, तो ये भी जायंट किलर है। आप इनका देखिए वो अब जो है उनका करियर बेस्ड रैंकिंग भी है 68। ये एक साल में जिस तरह से उसने ग्रैंड स्लैम में पार्टिसिपेट किया, तीन ग्रैंड स्लैम में पार्टिसिपेट किया, और उनका जो एक साल पहले जो रैंकिंग था 138 अभी 68 उसका करियर बेस्ड रैंकिंग, और सिर्फ उनसे तीन इंडियन जैसे हैं, जैसे आपको शशि मेनन उसमें उनका रैंकिंग था 71 1973 में, विजय अमृतराज 18th थे 1980 में, रमेश कृष्णन 23 थे 1985 में, और सोमदेव वर्मन 62 थे 211 में। और देखिए ये सारे प्लेयर्स जो है जायंट किलर्स है और बड़े टूर्नामेंट में उलट फिर कर सकते हैं।
लेकिन दादा सुमित्रा हम ये चाह रहे हैं कि क्योंकि अभी ये क्ले कोर्ट में मैच होना है और अभी विंबलडन खेल कर रहे हैं,
सुमित नागल खास करके क्ले कोर्ट स्पेशलिस्ट
जी, तो और खिलाड़ियों को भी शायद दिक्कत होगी अपना तालमेल वहां बिठाने में। अमरीका के ह्यूस्टन में चल रहा विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप टीम स्पर्धा में भारत ने विजयी शुरूआत की है, लड़के और लड़कियों दोनों में 3-0 से हारा है, तो जूनियर में स्क्वाश खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं, उम्मीद करेंगे आगे
देखिए। तो थोड़ी देर पहले ही बात की थी टेनिस में हम नया चैंपियंस देखना चाहते हैं, इंडिया का काफी सीनियर प्लेयर्स है, हमारा नया प्लेयर्स की जरूरत,
तो वही हम स्क्वाश में भी उम्मीद करते हैं। और घड़ी की सुइयां कह रही है विराम दीजिए कार्यक्रम को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने और खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए, और लिसनर्स हम चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।